हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3, टेक्स्ट नंबर 15। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वतान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं पितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 15। भगवान कहते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। शब्दों का अर्थ देखिए, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि, कर्म मतलब कार्य जो हम करते हैं, ब्रह्म यहाँ पर वेदों वेद को कहा गया। अब ब्रह्म ब्रह्म को भी कहा जाता है, ब्रह्म वेदों को भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म यानी वेदों से उद्भवम उत्पन्न विद्धि जानते हैं, यानी कि जो भी हमारे नियत कर्म है उनका विधान हमें कहाँ से मिलता है, वेदों से मिलता है। और आगे ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म मतलब जो वेद है, अक्षर मतलब परब्रह्म से। अब यहाँ पर अक्षर का मतलब होता है वो जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द लॉर्ड है ना, उसके विषय में अक्षर उसको बोला गया है। और समुद्भवम मतलब साक्षात प्रकट हुए। अब वेद कहाँ से आए, वेद तो साक्षात भगवान से, श्री भगवान से उत्पन्न हुए ना, उसको यहाँ पर अक्षर और परब्रह्म कहा गया है, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि आपके जितने भी नियत कर्म हैं वो वेदों में बताए गए हैं कि कौन कौन से कर रहे हैं। और वेदों वेद जो है वो किधर से आए, भगवान से, साक्षात भगवान से आए। तो क्या करना है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तस्मात् मतलब अतः यानी इसलिए, सर्वगतम यानी सर्वव्यापी ब्रह्म। अब यहाँ पर जो ब्रह्म है वो सर्वव्यापी ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है ना, भगवान जो उसका एक स्वरूप है ब्रह्म। हम क्या पढ़ते हैं, तत्त्वविदं तत् वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द से। ये जो ब्रह्म है ना, अभी नीचे जो लिखा हुआ है, अभी हमें क्या पढ़ता है, ब्रह्म का मतलब वेद भी होता है, ब्रह्म का मतलब भगवान का ब्रह्म, निराकार ब्रह्म भी होता है। तो हमको ये संदर्भ से देखना पड़ता है कि किस यहाँ पर किस वाले ब्रह्म की बात हो रही है। जैसे इंग्लिश में भी अक्सर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंड होता है, सिमिलर स्पेलिंग होती है, लेकिन फिर हम लोग संदर्भ से पता चलता है कि ये ना क्या है इसका मतलब। तो यहाँ पर नीचे जो लिखा है तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तो जो सर्वगतम यानी सर्वव्यापी ब्रह्म है, नित्य यानी शाश्वत रूप से यज्ञ यानी यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित होता है। अब समझ में आया कि देखो कर्म सारा वेदों से पता चलता है, वेद भगवान से प्रकट हुए, और इसलिए जो सर्वव्यापी ब्रह्म है यानी जो हर जगह पर मौजूद भगवान का स्वरूप है, वो यज्ञ में सदा स्थित रहता है। अब हर जगह पर भगवान है तो फिर यज्ञ में भी सदैव स्थित रहता है, क्यों, क्योंकि वो ये वेद जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं, और वेदों में ही हमारे सारे नियत कर्म बताए गए। अब देखो यहाँ से इसका लिंक कहाँ से जुड़ रहा है, भगवान ने श्लोक नंबर 8 में कहा नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो या कर्मणा शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध ये कर्मणा, कि आपको कर्म करना है, नियत कर्म आपको जरूर करना है, क्योंकि अगर आप नियत कर्म नहीं करोगे तो अपनी शरीर यात्रा को भी आप सही तरह से निर्वाह नहीं कर पाओगे। तो फिर आगे भगवान ने बोला ठीक है तुम्हें नियत कर्म तो करना है, लेकिन 9 ने बोला यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाच तो तुम्हें यज्ञार्थात कर्म करने, यानी विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। अगर यज्ञार्थात कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, लोकोयम कर्म बंधना। तो ये सारे जो भी कर्म होंगे वो आपके बंधन का कारण बनेंगे। तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संगम संग समाचार, इसलिए तुम्हें उसी विष्णु के लिए, उसी भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए, इससे तुम भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। और आज के श्लोक में, श्लोक नंबर 15 में भगवान बता रहे हैं कि वेदों में आपको आपके सारे कर्म बताए गए हैं, और वेद क्योंकि साक्षात भगवान से उत्पन्न हुए हैं, तो जितने सर्वव्यापी ब्रह्म आप जब यज्ञ कर्म करते हो तो उसके अंदर सम्मिलित होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर से समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में यज्ञार्थात कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यानी कि अब भगवान ने पहले खाली ये बोला था यज्ञार्थात कर्म करना है, लेकिन इतना क्लियर नहीं बोला था कि यज्ञार्थात कर्म किसके लिए करना है, लेकिन इसमें इस श्लोक में साफ साफ बताया गया है कि यज्ञार्थात यानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म यहाँ पर अच्छे तरीके से विवेचित किया गया। कैसे विवेचित किया गया, आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु को के पारितोष को के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अब अगर भगवान को प्रसन्न करना है, सर्वव्यापी विष्णु यज्ञ पुरुष जो है उसको प्रसन्न करना है, तो हम अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर सकते। फिर वेदों से कर्म की दिशा, यानी जो वेदों में कर्म के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको फॉलो करके ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं, यानी कि इसका मतलब है कि वेदों के हर शब्द में, सारे वेदों में कर्म की दिशाएं बताई गई हैं कि किस तरह से जीव को कर्म करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब वेदों में बताया गया है। तो हमें वेदों के हिसाब से कार्य करना है। आगे श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध यानी अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अगर हम शास्त्र के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं, अपनी मनमानी तरीके से कोई भी कार्य करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ उसे अवैध यानी नाजायज विकर्म यानी जो बिल्कुल अपवित्र पापपूर्ण कर्म कहा है, जो बिल्कुल पाप से भरा हुआ कर्म होता है यदि हम वेदों के अनुसार नहीं करते। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों के निर्देशन प्राप्त करना चाहिए। अगर हम कर्म के फलों से बचना चाहते हैं, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं, तो फिर हमें अपनी मर्जी से कार्य नहीं करना, बल्कि वेदों में जिस जिस हमें बताया गया उस तरह से कार्य करना। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान की परम राज्य में निर्देशन में कार्य करना होता है वेदों के निर्देशन। यानी कि अब संसार में भी आप रहते हो तो अपनी मर्जी से नहीं जीते, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करके, ऐसे हम नहीं सोच सकते कि भले लाल बत्ती हो या ग्रीन लाइट चल रही हो या ट्रैफिक में कुछ भी चल रहा हो, हम अपनी मर्जी से गाड़ी को घुमाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमें अपराध दंड भोगना पड़ेगा। कोई छोटी सी भी बात अगर हम गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नहीं करते हैं तो अपराध लगता है और हमें दंड भोगना पड़ता है। तो उसी तरह से हम भगवान के इस निसर्ग को यूज कर रहे हैं, भगवान की जो ये गवर्नमेंट है उसमें भी भगवान ने जो वेदों में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं उसी के हिसाब से हमें जीना है, अन्यथा लोकोयम कर्म बंधन, फिर कर्म बंधन में फंसेंगे अगर हम वेदों के अनुसार नहीं चलेंगे। और आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेदों में आखिर ये आदेश आते कहाँ से है, क्योंकि भगवान की गवर्नमेंट है ना ये, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताए वेदों में ऐसे निर्देश भगवान की श्वास से प्रकट होते हैं, डायरेक्ट से भगवान की श्वासों से वेद प्रकट होते हैं। तो ये सारे रूल्स जो है वो भगवान ने ही बताए हैं जो वेदों में बताए गए हैं। कहा गया है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् यद्ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथ वांगिरस, अर्थात चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद भगवान की श्वास से अद्भुत हुए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 4.5.11 ब्रह्म संहिता में प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सके। कितने भगवान कृपालु हैं। वास्तव में संसार में हम देखते हैं कि जो भी एक बार किसी से हम कोई हमारी ऐसी हमारे साथ गलती करता है, जो अपराध करता है, फिर बाद में हम क्या बोलते हैं, इसका तो मुंह नहीं देखना है मुझे। खासतौर पर जो हाई होगा ना, दो अगर मित्र होंगे उसमें जो बड़ा होगा, मतलब फिजिकली या फिर फाइनेंशियली जो जिसकी पोस्ट बड़ी होगी ना, वो बोलेगा कि ये खराब बंदा है, इसके साथ आइंदा में बात नहीं करना है, ये नहीं करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जीवन भगवान के साथ आना, भगवान के साथ जो अपना संबंध है, दास का संबंध है, उसको बुलाकर प्रभुत्व जताने की इच्छा की, जिसके कारण भगवान उसे इस संसार में आकर दंडित होना पड़ा। लेकिन भगवान फिर वापस ही चाहते हैं कि नहीं, ये मेरा है, इसे वापस मेरे पास आना है, तो मैं इसके लिए कुछ तो ऐसा छोड़ूं जिसे पढ़कर, जिसे समझकर वो वापस से मेरे पास आ सके। इसे भगवान ने जीव के लिए, पहले तो अब भगवान, क्योंकि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि भगवान क्योंकि ना सर्वशक्तिमान है, तो अपनी हर इंद्रिय से दूसरा कार्य कर सकते हैं। तो भगवान ने अपने श्वासों से वेद प्रकट किए हैं और फिर अपने नेत्र से प्रकृति को गर्भस्थ किया है, और समस्त जिससे समस्त जीवों का जीवन संभव हुआ। और फिर वेद और ये बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए वेदों का ज्ञान और उसके अंदर जो आदेश दिया है, जो पढ़कर जीव फिर से भगवत धाम आ सके। वास्तव में वेदों का मकसद केवल इतना ही है कि आप जिस स्तर पे हो वहां से ऊपर उठ के एटलीस्ट आपको कहाँ आना है, भगवान के पास आना है, क्योंकि भगवान ही ने वेद बनाए हैं जीवों के कल्याण के लिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। अब संसार में जीव आया है तो जीव की बहुत सारी इच्छाएं हैं, और ये इच्छाएं वैदिक आदेशों के अनुसार यदि हम पूरी करते हैं, तो ऐसे पूरी करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि इच्छाएं समाप्त। क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि इच्छाएं पूरी करते 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 जब जीव ऊब जाता है, दुखी हो जाता है कि इनसे तो मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, फिर वो भगवान के पास लौटने के लिए प्रयत्न करता है। फिर जीव को ये महसूस होता है, ये रियलाइज होता है कि इन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने से मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि वैदिक आदेशानुसार जब वो कार्य करता है, तो इसे करते 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 उसका हृदय पवित्र हो जाता है और उसे अपनी भूली हुई स्मरण शक्ति वापस मिल जाती है, और उसे ये रियलाइज होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो शरीर को चाहे कितना ही सुखी करने के लिए कितनी ही सुविधाएं मैं प्राप्त कर लूं, लेकिन इन सब से मुझे कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, और फिर कुछ और करना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा की संतुष्टि के लिए मुझे क्या करना है, ये सोचने के लिए निकलता है। और जब ये सोचने के लिए जब जीव के अंदर इतनी सोच की शक्ति आती है, तो भगवान कहते हैं जो जिस श्रद्धा को रखता है, मैं उसी श्रद्धा को पूरा करने के लिए उसकी सहायता करता हूँ। तो फिर भगवान किसी न किसी तरीके से उसको किसी ऐसे व्यक्ति से मिला देते हैं, किसी ऐसे गुरु से मिला जाते हैं। देखो, जितने आप सिंसियर होगे ना, उतना ही भगवान आपके साथ है ना, सिंसियर व्यवहार करेगा। आप यदि चाहते हो कि धोखा खाऊं, आप यदि चाहते हो प्रभुत्व जताऊं, आप यदि चाहते हो कि मैं संसार में सुखी हूं, तो भगवान आपको ऐसे ही चांसेस प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वाकई में रियल इटर्नल सुख चाहता हूं, मैं वाकई में भगवान के साथ अपने प्रेम को वापस से निर्माण करना चाहता हूं, मैं वाकई में वापस से भगवान के दासत्व को स्वीकार करना चाहता हूं, तो भगवान ऐसे ही लोगों से आपको मिला देते। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब जीव को ये रियलाइज होता है तो उस वक्त ये जो जब ऐसा रियलाइज होता है कि संसार में कुछ भी मेरे लिए संतुष्टि का कारण नहीं है, तब क्या होता है, ये श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। अब ये कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें, अर्थात जो भी कार्य करते हैं वो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेश का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावना मृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है कि यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। अगर खाली भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण भावनामृत में आप कार्य करते हो, भगवान को प्रसन्न अर्पण करके खाते हो और भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद उच्छिष्ट आप खाते हो और इसके अतिरिक्त चार नियम का पालन करते हो और भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हो, अर्थात कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हो, तो वैदिक यज्ञ वाले आप नहीं भी करते हो। साफ साफ लिखा है, जो वैदिक आदेश का पालन नहीं भी करते हैं वो भी यदि कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाती है। वास्तव में वैदिक यज्ञ करने का एक ही कारण है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो यदि हम डायरेक्ट से भगवान को प्रसन्न करते हैं और वेदों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सारे जीव प्रसन्न हो जाते हैं, सारी प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, तीनों लोक प्रसन्न हो जाते हैं। तो सदैव भगवान को प्रसन्न करने के कार्य करने हैं। कौन से? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का जप करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है और भगवान से प्रेम करने के, जो जैसे भगवान को प्रसाद अर्पण करना, भगवान के लिए वस्त्र बनाना, भगवान की विग्रह सेवा करना, ठीक है, इस सब से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।